हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए और अध्ययन करने के लिए गुरु अकारंग की कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माध्यस्य यतोन् वयादितरतश् चार्थीष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति या सूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम् परम् धीमहि। धर्मः प्रोषितकर्तावोऽत्र परमो निर्मात्सराणां सथा। वीथ्यं वास्तवमास्त वास्तु शिवदम् तापतयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे वीश्वरः। सद्योरित्यवरुच्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतम् रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ओमज्ञानतिमिरङ्गस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया। चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशाक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरम श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कृपया इन अत्यंत ही अद्भुत और सुस्वादु शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ऋषिगण भगवान के विषय में श्रवण की लालसा को अत्यधिक तीव्रता से बखान करते हुए सूच से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया हमें सुनाइए। हम भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए अत्यधिक आतुर हैं। हमारी लालसा हमारी उत्कंठा बढ़ती जा रही है और हमें ये कथाएं श्रवण करने से किंचित भी तृप्ति नहीं हो रही है। हमारा हृदय और अधिक श्रवण करने के लिए तड़प रहा है। बहुत ही सुंदर शब्द हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रावतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। शब्दों का अर्थ देखिए। वयम अर्थात हम, तू मना लेकिन, न नहीं, वे तृप्यामा तृप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ऋषिगण अपनी लालसा को सूत गोस्वामी के सामने प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करके तृप्त नहीं होते। उत्तम श्लोक का विक्रम है। उत्तम श्लोक का मतलब भगवान जिनका यशोगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। उत्तम श्लोक भगवान को कहा जाता है, यानी कि भगवान का क्या मतलब है, जो षडैश्वर्य से युक्त हो, है ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गणा। तो ऐसे भगवान जिनका यशोगान उत्तम श्लोकों के जरिए, यानी कि मुनिगण, देवतागण, ऋषिगण, उत्तम श्लोक, दिव्य श्लोकों के जरिए जिन भगवान की स्तुति करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, उनको कहा जाता है उत्तम श्लोक विक्रम, मतलब साहसिक कार्य। मतलब ऐसे भगवान ने इस संसार में आकर जो अद्भुत कार्य किए हैं उनके विषय में श्रवणताम, यत श्रवणताम, यत मतलब जो श्रवणता, मतलब निरंतर सुनने से, कंटिन्यूस यदि आप हमें भगवान की लीलाओं के विषय में सुनाओगे तो भी वयम तो न तृप्त्याम, मुझे फिर भी हम लोगों को भगवान के उन यशोगान को श्रवण करने से तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान की लीला इतनी प्रिय है, इतनी मधुर है कि हमारा दिल करता है। अभी आगे कहते हैं यशवताम रसज्ञानाम, तृप्ति तो नहीं हो रही है बल्कि रसज्ञानाम, मतलब हम इतने भगवान के नाम अमृत को चखने की इतनी प्यास है कि रस मना रस के ज्ञान मतलब विज्ञों को, और स्वादु स्वादु पदे पदे इतनी उत्कंठा है, इतनी लालसा है, इतनी तीव्रता है कि उसको श्रवण करने के पद पद पर स्वादु स्वादु पदे पदे, मतलब स्वाद लेते हुए सुस्वादु सुस्वादु लगता है पदे पदे पग पग पर, मतलब एक एक शब्द और जिस जिस तरह से आप सुनाते जाते हो ना, तो और भी ऐसा लगेगा हम और भी सुने और भी सुने और भी सुने कृष्ण के विषय में, कभी ये वार्ता खत्म नहीं हो, कंटिन्यूस भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तृप्ति नहीं हो रही है भगवान के इन पवित्र लीलाओं को श्रवण करने। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखो ऋषिगण यहाँ पर आए थे यज्ञ करने के लिए, तो जब उन्होंने प्रश्न करना आरंभ किया तो सुत गोस्वामी कह रहे होंगे, ऐसा हम ना सोच सकते कि सूत गोस्वामी ने कहा होगा कि चलो आप थोड़ी सी कथा करते फिर यज्ञ भी तो करना है, तो आप लोग ऐसा करो यज्ञ करो फिर थोड़ी थोड़ी मैं आपको कथा बताता जाऊंगा इस तरह। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारा बाकी सारे काम जितने भी यज्ञ तपस्या, यज्ञ तपस्या ध्यान और ये ज्ञान इत्यादि जो कुछ भी है ना, उसे हम ऊब चुके हैं, वो सारे कामों से हमारा जी भर गया है, हम भगवान श्री कृष्ण की कथा से तृप्त नहीं हो रहे हैं। और ऐसा मतलब सूत गोस्वामी ने अगर ऐसा कहा कि आपने पहले भी तो भगवान की कथाओं के विषय में बहुत कुछ सुना है, तो अभी जो आए हैं यज्ञ करने के लिए सबको बोला है यज्ञ करें, तो फिर आप यज्ञ करो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कथा सुनने की लालसा को लेकर तो यहाँ पर आए हैं, और आपको देखकर तो लालसा और भी बढ़ गई है यज्ञ करने का, बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है, इतना हम चाहते ही नहीं है कि हम अब कथा श्रवण करने के अतिरिक्त और कोई क्या कार्य करें, अब और कुछ भी उस भगवान, वयम तो न वितृप्याम, हमें तृप्ति नहीं हो रही है उस भगवान की जिनके गुणगान अनेकों ऋषि मुनि यहाँ तक के शेषनाग भी अपने हजारों मुखों के द्वारा कंटिन्यूस करते रहते हैं, और उनकी कथाओं को श्रवण करने से तो एक एक पद पे यश्रवताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे, एक एक क्षण में, एक एक पद में, एक एक शब्द में, और हमें रस का आस्वादन हो रहा है, एक एक अक्षर में सुस्वादु लग रहा है। भगवान की कथा का एक एक गान, एक एक शब्द जो है वो हमारे हृदय में और भी ज्यादा आह्लाद उत्पन्न कर रहा है। तो कृपया हमें उन कथाओं को श्रवण कराइए। ऐसा होता है ना, जब हमें बहुत तेज भूख लग रही होती है, और अगर ना प्रसाद जो भी हमारे सामने आया है बस ऐसे ही है, मतलब कम टेस्ट हमारी पसंद का नहीं है, तो हम कितना खाएंगे? जितना के हमारी भूख होगी हम उतना खा लेंगे, फिर बस बोलेंगे कि नहीं अभी मन ही नहीं कर रहा ना। लेकिन अगर प्रसाद इतना टेस्टी हो फिर क्या होगा, हम प्रसाद खाएंगे और बोलेंगे पेट तो भर गया पर जी नहीं भरा। तो जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा हमारा उसके अंदर लालसा होती है, बहुत ज्यादा हमारी उसके प्रति प्रेम होता है, तो उससे कभी जी नहीं भरता। तो यहाँ पर क्योंकि कथा है, कथा तो जी भरने वाली बात है ना, पेट तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा फिजिकल रूप से कोई भर जाएगा फिर हम इनफ हो जाएगा कि भाई नहीं भरते। लेकिन कथा तो ऐसा है कि वो हृदय के अंदर हृदय गम्य होने की है। तो जो भगवान यहाँ पर बोला यह श्रीमताम रसज्ञानाम, रसज्ञानाम का क्या मतलब होता है कि जो रस का आस्वादन लेना जानते हैं, जो वाकई में रसज्ञ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस कथा सुनते हैं, कथा का रसास्वादन नहीं करते, मतलब उनको व्यास आसन पे बैठकर कोई भी कुछ भी सुना के चला जाए, कोई बस भगवान के विषय में बता रहा है, कोई निराकार के विषय में बता रहा है, कोई देवताओं के विषय, उनका लक्ष्य क्या है कि बस भगवान के विषय में सुन रहे, हाँ भाई जाएंगे मंदिर में कुछ ना कुछ कथा होगी सुन के आ जाएंगे, उस शब्दों में उसका कोई आकर्षण नहीं होता है, मानो उनको अरसज्ञ कहते हैं। अरसज्ञ कैसा होता है, जैसे जानवर को है ना ये नहीं पता होता है कि ये पिज्जा है, ये बर्गर है, ये ना कौन सा स्वादिष्ट चीज है, ये इसे नहीं पता होगा। उनको आप है ना बस जो भी खिला दो वो खा लेंगे, घास होगी जो भी होगी उसको खिला के पेट भर जाएगा ना। फिर उनके सामने भले कोई भी टेस्टी चीज रखोगे, जैसे कभी कभी हम लोग जाते ना पशु को खिलाने के लिए या फिर इस तरह, तो उनको अगर पहले उनको घास खिला के पेट भरा, फिर उनको बहुत ही टेस्टी देसी घी की रोटी बना के दे या पेड़ा बना के दे, लेकिन सूंघ के मुंह हटा देंगे कि भाई हमें वो नहीं खाना, हमारा पेट भर गया, अब हमें और नहीं खाना। यानी कि स्वाद को नहीं ले रहे हैं वो सिर्फ अपनी तृप्ति को ले रहे हैं कि पेट अगर भर गया उसका तो फिर वो और नहीं खाते। इसका मतलब है वो भले कितना ही टेस्टी हो उसमें उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, खाली वो पेट। उसी तरह से कुछ लोग ऐसी कथा के प्रति भी ऐसी श्रद्धा रखते हैं, बस कथा श्रवण करनी है, उस कथा में क्या बोला जा रहा है, कैसे भगवान के निराकार रूप का बखान किया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है भगवान क्या है, कुछ भी यहाँ ऐसे कंधा हिला के बोलेंगे हाँ, कुछ समझ में भी नहीं आता है, फिर बाद में उनसे पूछो कि कथा कैसी लगी तो बोला हाँ बहुत अच्छी थी कथा, और फिर बोला उसमें से आपको आया क्या समझ में, तो बोला बस ये भगवान के बारे में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कुछ नहीं पता कि भगवान के बारे में बोल रहे थे या भगवान के खिलाफ बोल रहे थे, कुछ भी पता नहीं होता, बस वो ऐसे कंधा हिला के आते। ऐसे लोग को अरसज्ञ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रसज्ञ नाम की बात हो रही है कि जैसे वो रसज्ञ होते हैं, वो रस को जानते हैं, वो रियल टेस्ट से उनको पता होता है कि क्या रियल टेस्ट है, क्या भगवान की कथाओं के अमृत पान करने का स्वाद है। तो जिनको ये स्वाद आ जाता है, जिनको एक बार असली स्वाद के विषय में पता चल जाता है, या एक बार जिसने रियल टेस्ट को आस्वादन कर लिया, प्योर नेक्टर जिसने एक बार स्वाद आस्वादन कर लिया ना, फिर उसको भौतिक चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है, वो भौतिक चीजों की तरफ वो बिल्कुल आकर्षित होते ही नहीं है, बल्कि भौतिक चीजें तो उनको कैसी लगती है, जैसे गंदगी, जैसे जानवर लोग कैसे कचरा खाते हैं, ऐसी लगती है उनको कि भौतिक चीजें तो कुछ भी उनमें टेस्ट नहीं लगता, लेकिन भगवान की कथाओं के विषय में, श्रीमद् भागवतम के शब्दों के विषय में, भगवद गीता के शब्दों का आस्वादन करने में उन्हें पग पग पर बहुत आस्वादन आता है। वो तड़प रहे होते हैं, कहीं हालांकि पता होता है कि यहाँ पर अभी है ना ये वाला प्रोग्राम हो रहा है, तो जो कथाएं होने वाली वो भी पता होता है कि भाई अब दामोदर लीला का कार्तिक मास का प्रोग्राम है तो दामोदर लीला ही बताई जाएगी, लेकिन एक बार सुनी फिर दूसरी जगह प्रोग्राम रखा, वही वक्ता है, वही पब्लिक है, वही जगह, वापिस वही चीज हो रही है, तो भी दिल करेगा कि नहीं मुझे किसी तरह से लीक किया जाए वहां पर, मैं कैसे भी करके वहां पर जाना चाहती हूँ, श्रवण करना चाहती हूँ। फिर दूसरी पता चलेगा कि भाई आज हमने घर पे भी 2.34 पढ़ा है या 2.44 पढ़ा है, तो मंदिर में भी यही पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी नहीं मुझे जाना है, वापिस से श्रवण करना है, क्योंकि भगवान के शब्दों में और भगवान की कथाओं में एक ऐसा अद्भुत आनंद आता है जो केवल एक प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त ही आस्वादन कर सकता है, और उसका आस्वादन इतना तीव्र होता है कि वही शब्द यदि दोबारा रिपीट किया जाता है तो भी उसे उतना ही आनंद, बल्कि स्वादु स्वादु और भी अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, और उसका दिल करता है कि और भी मैं भगवान के विषय में सुनूं और भी भगवान की कथाओं का श्रवण करूं। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से तात्पर्य समझाएंगे, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा शुभ वाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर है। अब ये जो भौतिक कथाएं हैं, सीरीज हैं, ये जो अलग अलग नॉवल्स होते हैं और ये सब कल्पित कथाएं, यानी कि वो क्या होती है, उनमें कोई रियलिटी नहीं होती, कल्पित होते हैं, सिर्फ कल्पना करके उसको इमेजिन करके लिखा जाता है, बनाई जाती है ना, उसकी कोई वास्तविकता तो नहीं है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ऐसे लौकिक यानी जो सांसारिक कथाएं होती है, कल्पित कथाएं, उनमें और इतिहास या भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर है, क्योंकि उसमें रस है, उसमें इतिहास जो हम पढ़ते हैं या जो भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं उसमें वो सजीव है, जैसे आत्मा कैसे सजीव है और पदार्थ निर्जीव है, इसी तरह ये सजीव है, उनका जब आस्वादन करते हैं, जैसे हम कल कैसे पढ़ रहे थे कि जब भगवान भले इस धराधाम पर नहीं है, लेकिन यदि हम भगवान की कथाओं का आस्वादन करते हैं तो फिर ऊपर वाले श्लोक में अगर आप देखो तो लास्ट लाइन में देखिए कि जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य कथाओं को सुनते हैं वे दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं। यानी कि जिन्होंने खाली श्रवण भी किया है तो भी उनको वैसा ही लगता है कि मैं भी उसी लीला का एक कैरेक्टर हूँ, उसी रस का वो आस्वादन कर रहे होते हैं जो कि उन्होंने किया, जो उस समय वहां पर प्रत्यक्ष मौजूद थे ना, उनसे उनके जितना ही उनको भी आस्वादन आता है। लेकिन भौतिक कथाओं में ऐसी कोई आस्वादन नहीं मिलता है, वो तो बस मनोरंजन के लिए, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए पढ़ा जाता है। आगे है, समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं, जैसे रामायण, महाभारत और दूसरे पुराण, इनमें भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं कि यदि हम जब भी जितनी बारी भी पढ़ेंगे हम उनको, तो हमें नया नया लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम फर्स्ट टाइम, इतना स्वाद मैंने इससे पहले कभी भी नहीं लिया, इतना टेस्टी लगता है। उदाहरणार्थ यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें नवीनता ही दिखेगी। इस संसार में अगर कोई नॉवेल, कोई भी किताब हम एक बार पढ़ लेते, दो बार पढ़ लेते, तीन बार, फिर ऊब जाते कि बस अब नहीं पढ़ना, ये तो मैंने इतनी दफा पढ़ी, रट गई है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को सैकड़ों बार पढ़ा हमने, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जब गीता सामने आती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस इसको पढ़ना है, इसके शब्द थोड़ा सा देख लो, मतलब रोज भक्त लोग रोजाना सुबह से कभी से 30 साल से 35 साल से रोजाना भगवत गीता पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अभी मैंने कितना भारी पढ़ा है, अभी बस रख देती हूँ, ये नहीं पढ़ती हूँ, अभी मुझे नहीं पढ़। लेकिन फिर भी जहाँ पर भी कथा होगी, जहाँ पर भी शास्त्र पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, वो कभी भी नहीं छूटते, क्योंकि रसज्ञ है ना, प्रेम करते हैं ना, और प्रेमी अपने प्रेम प्रीतम के विषय में सदैव श्रवण करना चाहता है, तो उसे हर क्षण अच्छा और भी ज्यादा नवीनता उसमें महसूस होती है। लौकिक समाचार इतिहास गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लौकिक और अलौकिक साहित्य यानी जो लिटरेचर्स हैं, जो भौतिक हैं और आध्यात्मिक हैं, उनके विषय में डिफरेंस बता रहे हैं कि वो गतिशील हैं। जो लौकिक समाचार हैं या लौकिक जो न्यूज हैं, और ये जो है ना लौकिक जो संसारी हैं, वो सारे गतिहीन है, यानी कि उनमें कोई जान नहीं है, उनमें कोई टेस्ट नहीं है। और आज की न्यूज़पेपर आप आज आया आप पढ़ोगे, नया लगेगा ना तो आज शाम तक, लेकिन कल वो केवल रद्दी बन के रह जाएगा, किसी कार्य का नहीं है उसका, कोई भी ना अब फायदा ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि कल हो गया था ना वो, एक दिन में वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाता है। लेकिन भगवान के विषय में अगर हम सुनते हैं, तो भगवान ने कितने हजारों साल पहले, 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण धरा धाम पे आए, लेकिन आज भी वो लीला, आज भी वो शब्द भगवान ने जब भगवद गीता में कहा, वो शब्द आज भी जब हम पढ़ते तो हम क्या बोलते हैं, आज भगवान ये कह रहे हैं, यानी न्यूज लगता है। जैसे न्यूज पेपर का क्या मतलब होता है, न्यू का मतलब होता है नया, और एस लगा दिया मतलब प्लूरल में, कि बहुत सारी न्यूज है, लेकिन वास्तव में वो सब कचरा है। न्यूज तो यहाँ पर है जो हर दिन वो नया का नया रहता है। क्या कहते हैं हम, आज हमें भगवान ये बता रहे हैं, आज कृष्ण ये कह रहे हैं, आज हमें यहाँ पर सुद गोस्वामी सनक आदि ऋषि से ये प्रश्न कर रहे हैं, तो कैसा ये न्यूज है, ये सदैव नया रहता है। और जो भौतिक है वो गतिहीन है, उसमें कुछ भी नयापन नहीं है, बस वो टाइम पीरियड के लिए टेम्पररी है, उस टाइम पर आपको मनोरंजन देता है, लेकिन बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन ये जो यहाँ पर रखा, आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जो जिन लोगों में दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि है, वे ऐसी कथाएं सुनते अघाते नहीं है। इतना जो भगवान की कथाओं की और रुचि रखते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, वो कभी भी भगवान की कथाओं को श्रवण करने से अघाते नहीं है, उनका दिल नहीं भरता है। और यदि किसी का दिल भर जाए ना, तो समझ लो कि उसके प्रेम में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रीतम के विषय में श्रवण करने का एकमात्र उद्देश्य होता है प्रेमिका का। प्रेमिका सदैव चाहती है कि मैं अपने प्रीतम के, और जिस दिन जी भर जाए ना उसकी बात से, तो समझो उसके प्रेम में कमी आ गई है। तो यहाँ पर ये है, सुद गोस्वामी अपने प्रेम की उत्कंठा को, अपने प्रेम की लालसा को बता रहे हैं कि हमारा दिल नहीं भर रहा है कथाएं श्रवण करने से, लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। लौकिक कार्य जो मतलब सांसारिक होते हैं, वो अगर हम लोग 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, फिर बोलेंगे बस अब दिल भर गया। लेकिन भक्तिमय कार्यकलापों के लिए सदैव उत्कंठा हृदय में भक्त के बनी होती है कि कुछ ऐसा करें, कृष्ण के लिए क्या करें, कृष्ण के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। अब कैसे गुरु महाराज को प्रसन्न करें, कैसे अच्छे से अच्छे नाम जप करें, शास्त्र श्रवण करें, और अच्छी सेवा कैसे करें, तो उसमें प्रतिक्षण आनंद वृद्धमान होता है। यही होता है फर्क भौतिक और अलौकिक और अलौकिक चीज में, उसमें आनंद जो है वो प्रतिक्षण घटता जाता है। जो चीज आप कर कर लेते हो ना, उसे लगता है बस अब ये मैंने बहुत साल किया, अब बस अब मैं इसको ट्यून चेंज करना चाहती हूँ, ये वाला अभी मुझे ना इसमें साउंड में, कोई भी गाना भी हम सुनते हैं ना तो पहले हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है, और फिर उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने 6 महीने सुनो ना, फिर ऐसा लगेगा कि अब मेरे सर में दर्द कर रहा है, अब मैं वो ज्यादा श्रवण नहीं कर सकता उसका, मेरे अभी मुझे कुछ और नया चाहिए, नया कुछ और होगा वो ज्यादा टेस्टी होगा, ये मैंने सुनी। लेकिन महामंत्र हम कब से पढ़ रहे हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले महामंत्र दिया, और हम जब से मतलब भक्ति में आए हैं तब तक हम इस महामंत्र को ही श्रवण कर रहे हैं, और वास्तव में ये एक वास्तविकता है, जितना अधिक श्रवण करते उतना अधिक श्रवण करने की प्यास बढ़ती है। जिनका जो लोग ज्यादातर कीर्तन नहीं करते उनकी अंदर कीर्तन के अंदर उनकी रुचि भी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो ज्यादा करते हैं उनको ऐसा लगता है और भी कीर्तन होना चाहिए, और भी कीर्तन होना चाहिए, और भी भगवान के पवित्र नाम का जप होना चाहिए, और भी कथा होनी चाहिए, और भी श्रवण होना चाहिए, इसमें उनको और भी ज्यादा अधिक 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 आनंद आना शुरू हो जाता है। लेकिन लौकिक क्या होता है, वो टेस्ट लेस हो जाता है थोड़ी टाइम के बाद। अब इस श्लोक में फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम इसके विषय में श्लोक उपाध्याय जी यहाँ बताएंगे कि उत्तम श्लोक उस साहित्य को सूचित करता है जो अज्ञानता के लिए नहीं है। अब देखो तम कहते हैं अज्ञानता को, हम बोलते हैं ना ओम ओम अज्ञान तमरांतस्य, तम कहते हैं अज्ञानता को, और उत्तम मतलब जहां पर अज्ञानता ना हो, वो शास्त्र वो साहित्य जो परिपूर्ण ज्ञान हो, ज्ञान की तरह प्रकाशमान हो। तो यहाँ पर श्री रूपा जी बोलते उत्तम श्लोक उस साहित्य को सूचित करता है जो अज्ञानता के लिए नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है ना, उसमें तो अज्ञानता होती है ना। अज्ञानता का क्या मतलब है, अज्ञानता का मतलब होता है जिसमें आपको आपके असली स्वरूप से अलग किया जाए, आप वास्तव में आत्मा है लेकिन यदि आपको भौतिक शरीर से रिलेटेड करके कोई भी चीज बताई जाती है तो वो अज्ञानता है, और अज्ञानता से कभी भी कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, अंधकार से कभी कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, प्रसन्नता तो प्रकाश से आती है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि वयम तो न वितृप्त्यामी उत्तम श्लोक विक्रम, क्योंकि ये जो शास्त्र है जो अलौकिक शास्त्र जो दिव्य शास्त्र जो स्पिरिचुअल शास्त्र जिसके विषय में हम पूछ रहे हैं वो उत्तम श्लोक है, उसमें कुछ अज्ञानता वाली बात नहीं है, उसमें डायरेक्ट से आत्मा का संबंध अपने कृष्ण के साथ बताया जाता है। तो ऐसे उत्तम श्लोक को श्रवण करने से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोले लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है, वह तमोगुण से परे होता है और इसे जो जो पढ़ा जाता है त्यों त्यों यह और भी प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो ज्ञान अधिक, जो ज्ञान का भगवान ऐसे कहते हैं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है 10.11 में भगवान कहते हैं तेषामे वानुकं पार्थम अहम नाशयाम्यात्मा भावस्थो ज्ञान दीपेन भासत, कि जो उनके हृदय के अंदर जो अंधकार है जो अज्ञानता है उसको मैं ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से प्रज्वलित करके वो सारे अंधकार को खत्म कर देता हूँ। किन के हृदय में, वो किन के हृदय में भगवान कहते हैं 10.10 में तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सदैव मेरे नाम का भजन करते हैं, जो सदैव मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, जो केवल श्रवण और कीर्तन को ही सदैव अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, उनके हृदय में ही ज्ञान का प्रकाशमान दीपक प्रज्वलित करता हूँ। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ज्यों ज्यों पढ़ा जाता है त्यों त्यों ही और भी प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक हो जाती है। तथा कथित मुक्त पुरुष अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चरित करते संतुष्ट नहीं होते। अब तथा कथित मतलब ऐसे ही है, वो जो नाम नहात मुक्त है होते हैं, वो क्या कहते सदैव, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं आखिर में उसमें तदात्मय होकर ब्रह्म बन जाऊंगा। तो ऐसे वो सदैव इस यही बात बताते, ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाव है। अब क्या है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि ऐसे कहते कहते एक दिन इतना बेजार हो जाते हैं क्योंकि प्रेम का आस्वादन कर ही नहीं पाते। तो ये जो ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि करते ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक दिन भगवान के अंदर लीन हो जाऊंगा और शांत हो जाऊंगा। तो आत्मा गतिशील है, आत्मा क्रियाशील है, उसे कुछ न कुछ करना है, उसको शांति में आनंद नहीं आता। फिर क्या होता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। फिर ऐसे करते 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 थक जाते हैं, उबाव हो जाता है, उनका जीवन नीरस हो जाता है। फिर क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथाओं, यानी कि ऐसे जो भक्त, ऐसे जो नाम नहाद मुक्ति पाने वाले जो जीव होते हैं, वो भी क्या उन चीजों से थक के फिर आखिर में क्या करते हैं, आयता से श्रीमद् भागवतम के लीलाओं को पढ़ने की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उनके विषय में बता रहे हैं, लेकिन जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं, कितने भाग्यशाली कि वो इन ब्रह्मास्मि की इंटरेस्ट से हटके भागवतम की ओर मोड़ सके, इतने इतना भाग्य नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वे पदार्थ और परोपकार की ओर मुड़ते हैं। फिर वो सोशल वर्कर बन जाते हैं, यानी कि इस अहम ब्रह्मास्मि से उनको उकता ही जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जो श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं, लेकिन कुछ के अंदर इतना सौभाग्य नहीं होता है, कुछ कब दुर्भाग्य कुछ और अधिक होता है, तो क्या वो सोशल वर्कर बन जाते हैं, भक्ति से भी चले जाते हैं, वो तो बिल्कुल हट जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मायावाद दर्शन है, मायावाद मतलब कि भगवान को जो मिथ्या, भगवान के शरीर को जो मिथ्या समझते हैं, भगवान की रियलिटी को, भगवान की लीलाओं को जो नहीं समझते हैं, जो भगवान को निराकार समझते हैं, ऐसे मायावाद दर्शन लौकिक है। वो क्या है, वो मेटेरियल है, जबकि भगवद गीता तथा श्रीमद भागवतम का दर्शन दिव्य है। वो कभी भी नहीं उकताते, कभी भी तृप्त नहीं होते। तभी तो ऋषिगण कहते हैं, वयम तु न वितृप्त्याम उत्तम शोक विक्रमे यश्रवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम की कथाओं को लीलाओं को श्रवण करते जाते हैं, उनकी और भी आकर्षण। कहीं भी नहीं लिखा होगा कि भगवान का कोई भक्त है उसको अभी लीलाएं श्रवण करने का इच्छा नहीं हो रही है, या फिर अभी वो कुछ और करना चाहता है भगवान की कथाओं में और भगवान के नाम में उसको रुचि नहीं है। अगर रुचि नहीं है तो वो भक्त नहीं है। लेकिन यदि कोई वाकई में रसज्ञ है, वाकई में कोई भगवान का भक्त है, जो वाकई में भगवान से प्रेम करता है, तो उसका कथाओं के प्रति और भगवत नाम के प्रति दिन प्रतिक्षण प्रतिक्षण स्वादु स्वादु पदे पदे एक एक क्षण में भगवान की ओर, भगवान की कथाओं की ओर, भगवान के नाम की ओर उसका आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक हमने श्लोक नंबर 19 पढ़ा। अभी 20, 21 और 22 में हम और भी भगवान के विषय में, भगवान की कथाओं के विषय में पढ़ेंगे, और 23 में जो है वो हमारा अंतिम प्रश्न जो कि ऋषिकर्ण करेंगे, वो अंतिम प्रश्न हम श्लोक नंबर 23 में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा अध्याय जिसमें सुत गोस्वामी जो है वो प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। कृपया आप सब साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।